नमस्कार भारत, 24 अगस्त शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। महाभियोग के कयासों पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, ऐसा किया गया तो औंधे मुंह गिरेगी अर्थव्यवस्था।
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very
बाढ़ से तबाही के लिए केरल ने तमिलनाडु की ओर उठाई उंगली, जानेंगे क्या है जमीनी हालात। असम में पिछले 10 सालों से चल रहे हैं खास डिटेंशन कैंप, जानेंगे कौन रहते हैं यहाँ और कैसी होती है उनकी जिंदगी।
हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे लेके गया और जेल में डाल दिया, ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा हुआ ना, ये तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था मेरा।
बाथरूम का सामने सोना पड़ता है आदमी को।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत कौर से। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि रूसी जांच के मामले में उनका न्याय विभाग किसी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आएगा। यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान सेशंस पर टिप्पणियां की। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जेफ सेशंस को इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि वो उनके चुनाव अभियान के समर्थक थे और उन्हें वो अपने प्रति वफादार लगते थे। जेफ सेशंस ने खुद को राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी दखल की जांच से अलग कर लिया था। ट्रंप जेफ के इस फैसले की आलोचना करते रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जाएंगे। इस दौरान वो प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत करेंगे। माइक पोम्पियो ने ये घोषणा वॉशिंगटन में की। उनके इस दौरे पर उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के नए विशेष दूत स्टीव बिगन भी साथ जाएंगे। अमरीकी सरकार ने स्टीव बिगन को हाल ही में नियुक्त किया है। वो फोर्ड मोटर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। स्टीव बिगन की नियुक्ति के मौके पर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा,
Steve will direct U.S. policy towards North Korea and lead our efforts to achieve President Trump's goal of the final.
स्टीव उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की नीति का निर्देशन करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप के उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिशों का नेतृत्व करेंगे। स्टीव और मैं अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जाएंगे। ये थे अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भूमि सुधारों पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां विभाजनकारी और देश में औपनिवेशिक दौर को याद दिलाने वाली हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में भूमि सुधार नहीं बल्कि गोरे किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और किसानों को मारा जा रहा है। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा था कि उन्होंने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को मामले पर नजर रखने को कहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में 72% कृषि भूमि देश के 9% गोरे किसानों के पास है और सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिसके मुताबिक कृषि भूमि का दोबारा बंटवारा किया जाएगा और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अमरीकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता हैदर नॉट ने पत्रकारों से कहा,
I can just tell you this is obviously an issue, a debate that's been going on for quite some time. We encourage and
ये लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है। अगर किसानों को मुआवजा दिए बिना उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा तो ये दक्षिण अफ्रीका को गलत रास्ते पर ले जाएगा। हम चाहते हैं कि इस अहम मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के बीच शांतिपूर्ण और पारदर्शी बहस हो। ये थे अमरीकी सरकार की एक प्रवक्ता के शब्द। गूगल ने यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल रहे करीब 50 से ज़्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। गूगल का कहना है कि ये अकाउंट्स ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB से जुड़े थे और गलत जानकारी फैला रहे थे। गूगल के उपाध्यक्ष कैंट वॉकर ने एक ब्लॉग में लिखा कि अकाउंट्स ने IRIB से अपने संबंधों को छिपाया। उन्होंने कहा कि इन अकाउंट्स के जरिए राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाला अभियान चलाया जा रहा था। कंपनी एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के साथ मिलकर अकाउंट्स के बारे में और पता लगाने की कोशिशें कर रही है। इटली के उप प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय संघ के सदस्य देश इटली के क्षेत्र में घुसाई एक नौका पर सवार 150 प्रवासियों को अपने यहां शरण नहीं देते तो वो अगले साल से यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग देना बंद कर देंगे। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ की शुक्रवार को होने वाली बैठक में इस मुद्दे का हल होना ही चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अपने खिलाफ महाभियोग लाए जाने के कयासों को लेकर कहा कि अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। यही नहीं, उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रमुख अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस पर भी तीखे प्रहार किए। मगर अब तक ट्रंप की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर रहे जेफ सेशंस ने इस बार अपने बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। क्या है मामला, जानने के लिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए गुरप्रीत कौर से।
डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 2 साल होने को हैं, लेकिन 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामले अब भी उनका सिरदर्द बने हुए हैं। चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप और चुनाव अभियान फंड के गलत इस्तेमाल के आरोपों से वो इनकार करते रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले उनके पूर्व वकील माइकल कोहिन ने कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव अभियान से जुड़े वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया था। कोहिन ने अदालत में ये भी कहा कि उन्हें ऐसा करने के निर्देश ट्रंप ने दिए थे। माना जा रहा है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपनी छवि को बचाने के लिए ये पैसे दिए होंगे। गुपचुप तरीके से की गई इस पेमेंट के बारे में अमरीकी चुनाव आयोग को नहीं बताया गया था। अमरीकी चुनाव के नियमों के मुताबिक ऐसी हर पेमेंट के बारे में चुनाव आयोग को बताया जाना चाहिए जिसका मकसद मतदाताओं को प्रभावित करना हो। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप पर इन पैसों के मामले में मुकदमा चलाया गया तो वो सामान्य अदालत में नहीं बल्कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए चलेगा। लेकिन गुरुवार को ट्रंप ने चेताया कि अगर उन पर महाभियोग लाया गया तो इससे अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगा। फॉक्स एंड फ्रेंड्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा,
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कि आप उस शख्स के खिलाफ महाभियोग कैसे ला सकते हैं जिसने इतना अच्छा काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी मेरे खिलाफ महाभियोग लाया गया तो बाजार चरमरा जाएगा। मुझे लगता है कि इसके बाद हर कोई गरीब हो जाएगा। हालांकि पत्रकारों का मानना है कि इस बात के आसार कम ही हैं कि ट्रंप के विरोधी नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आए। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने चुनाव में कथित रूसी दखल के मामले की जांच कर रहे न्याय विभाग के प्रमुख अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस पर भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की। सेशंस शुरू में ट्रंप के चुनाव अभियान के समर्थक थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को मामले से हटाकर जांच का जिम्मा अपने डेप्यूटी रॉड रोजनस्टाइन को सौंप दिया था। इस बात से नाराज चल रहे ट्रंप ने फॉक्स एंड फ्रेंड्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ये बहुत ही निराशाजनक दिन था। जेफ सेशंस ने खुद को मामले से अलग कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें मुझे बताना चाहिए था। मेरे दुश्मन भी कहते हैं कि जेफ सेशंस को आपको बताना चाहिए था कि वो मामले से खुद को अलग करने जा रहे हैं, तो मैं उन्हें वहाँ भेजता ही नहीं। उन्होंने यह नौकरी ली और फिर कहा कि मैं खुद को अलग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ये किस किस्म का आदमी है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की ओर से भी जल्द ही इन टिप्पणियों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि जब तक वो न्याय विभाग के मुखिया हैं, तब तक उनका विभाग किसी तरह के राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप न्याय विभाग की मुखर आलोचना करते रहे हैं। वह खास तौर पर न्याय विभाग द्वारा की जा रही 2016 के चुनावों में रूस के दखल की जांच को लेकर चिढ़े हुए हैं। स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मुलर की ओर से की जा रही जांच के कारण ट्रंप अक्सर ट्विटर पर भी भड़ास निकालते रहते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपने ऊपर महाभियोग लगाए जाने की संभावनाओं पर बोलने से बचते रहे थे, मगर इस बार उन्होंने न सिर्फ इस विषय पर बात की बल्कि चेताया कि अगर ऐसा किया गया तो अमरीकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और बाजार औंधे मुंह गिरेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की पृष्ठभूमि क्या है, जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की वाशिंगटन डीसी में मौजूद बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी से।
जाहिर ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अब एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो डिफेंसिव हो गए हैं, वो अपना दिफा कर रहे हैं और इसीलिए कि इम्पीचमेंट अगर उनकी होती है तो वो उस आर्ग्यूमेंट को जोड़ रहे हैं मीशत से, अमेरिका की इकोनॉमी से, कि उस पर असर पड़ेगा और सब गरीब होंगे, ताकि लोग जो है ये जान सकें कि वो इकोनॉमी के लिए कितने बेहतर हैं। और ये उन्होंने बात फॉक्स एंड फ्रेंड्स जो है उस टीवी शो में, उस इंटरव्यू में ये बात जो है उन्होंने की है। और अब बहुत सारे लोग اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے خوش نہیں تھے, وہ امریکی, وہ اب بات کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو امپیچ کر دینا چاہیے, جبکہ ان کے دو اہم ساتھی جو ہے انہوں نے کسی حد تک اعتراف جرم کر لیا ہے. تو نومبر کے جو مڈ ٹرمز الیکشن ہیں ان کو لے کر ریپبلکنز جو ہیں وہ تھوڑے انسیٹلڈ ہیں, وہ تھوڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو اس کے وہ نومبر کے الیکشن تک تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کرنے کے کوئی اقدامات نہیں لے گی, کیونکہ ماضی میں جب ہم نے دیکھا کہ ریپبلکنز نے امپیچ کرنے کی کوشش کی مسٹر بل کلنٹن کو اس وقت, تو ان کو مڈ ٹرم الیکشنز میں ناکامی کا سامنا رہا. تو لگ یہی رہا ہے کہ ڈیموکریٹس, کیونکہ ان کی اکثریت بھی نہیں ہے, ان کی میجورٹی بھی نہیں ہے, اور وہ اس لیے اتنے ووٹ اکٹھے نہیں کر سکتے جتنے چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپیچ کرنے کے لیے. تو لگتا یہ ہے کہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز تک ایسا کچھ نہیں ہوگا.
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے اس کے چیف اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر بھی کچھ نجی ٹپنیاں کی ہیں, کچھ ویکتیگت پرہار کیے ہیں. کیا لگتا ہے کہ اب کافی دباؤ محسوس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو اس طرح کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں؟
جی بالکل, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں, جب بھی ان کا دل چاہتا ہے وہ ٹویٹ کر کے کسی سے بھی لڑائی جو ہے لے لیتے ہیں اور کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. جیف سیشنز کے بارے میں وہ کافی شروع سے ان پر تنقید کرتے آئے ہیں, ان کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے آئے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے, جسٹس سسٹم کو نہیں سمجھتے, وہ وچ ہنٹ کا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بقول ان کے خلاف چل رہا ہے اس کا حصہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیف سیشنز نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بیان ایز سچ نہیں دیا, کبھی جواب نہیں دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تنقید کا. یہ ایک ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں اور ایک اہم پیش رفت ہے, جہاں پر انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو انفلوئنس کسی بھی پولیٹیکل, کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہونے دوں گا, اور ہائر اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ہم میٹ کریں گے امریکہ میں, کیونکہ امریکہ کا جو نظام ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ اسی پر چلتا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اس پر اثر انداز نہ ہو. یہ بہت اہم بیان ہے اور اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیف سیشنز جو ہیں, جو پچھلے عدالتی کاروائیوں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ان کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اب وہ اب ایک ویک فوٹنگ پر ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ بظاہر ان کو وہ بھی ان کو جواب ان کو دینا چاہیے اس موقع پر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چاروں طرف سے بہت سارے جسے کہتے ہیں ان کے ساتھیوں کی وجہ سے امپلیکیشنز بن سکتی ہیں.
واشنگٹن ڈی سی میں موجود بی بی سی سنواداتا ارم عباسی بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ چاروں طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں.
سنسنی نہیں, وشوسنیتا کا دم,
بی بی سی ہندی.
اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھیشن باڑھ سے جوجھ رہے کیرل کے کچھ حصوں میں پانی بھلے ہی اترنے لگا ہے, مگر حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں کہے جا سکتے. اس بیچ سبھی کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر اتنی تباہی مچی کیوں. اسی بات کو لے کر سپریم کورٹ میں کل کیرل نے تمل ناڈو کی طرف انگلی اٹھائی. کیرل کا کہنا ہے کہ تمل ناڈو کی لاپرواہی کے کارن کیرل میں اتنی زیادہ تباہی مچی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جاننے کے لیے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بی بی سی سنواداتا سلمان راوی سے, جو لگاتار کیرل سے باڑھ کی استھتی کی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے میں جٹے ہوئے ہیں.
دیکھیے, جن جیون سامان्य ہونے میں جس طرح کا نقصان ہوا ہے اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں, لیکن تازہ حالات یہ ہیں کہ اب ٹھنڈ پڑی ہے تمل ناڈو سرکار اور کیرل سرکار کے بیچ میں, کیونکہ سپریم کورٹ میں کیرلا نے جو ہے پورا الزام تمل ناڈو کی سرکار پر لگایا اور یہ کہا کہ ملا پیریار جو ڈیم ہے اس سے جو پانی انہوں نے اچانک چھوڑا اس کی وجہ سے پورا کیرل تباہ ہو گیا. سپریم کورٹ میں دائر جو اپنا ایفیڈیوٹ ہے اس میں کہا کیرل کی سرکار نے کہ 136 فیٹ پانی جب تھا اس وقت بھی تمل ناڈو کو چتایا گیا تھا, اس کے بعد جب 139 فیٹ پر پانی آ گیا تب بھی چتایا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے کسی نے کوئی سنی نہیں, اور اڈوکی باندھ وہ جو ہے آہستہ بڑھنے کی بجائے کیا ہوا کہ وہ اچانک اس پہ جو پریشر پڑا اس کی وجہ سے پانی بالکل باندھ کو توڑتا ہوا نکل گیا آگے اور تباہ کرتا چلا گیا, جو بھی اس کے لپیٹ میں آیا اس کو لپیٹتا چلا گیا. اور ایفیڈیوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 54 لاکھ لوگ اس پورے باڑھ سے پربھاوت ہوئے ہیں, جس میں 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور 1,564 گاؤں وہ پوری طرح سے پربھاوت ہیں.
پہلے بھی کافی بارش ہوتی رہی ہے, اس طرح کی بارش نہیں ہوئی ہو بے شک جتنی اس بار ہوئی ہے, لیکن کافی بارش پورے علاقے میں ہوتی رہی ہے. اس سمے باندھوں کا پربندھن کیسے کیا جاتا تھا؟ اس سمے باڑھ جیسے اس طرح کے حالات کیوں نہیں پیدا ہوتے تھے؟
دیکھیے, انسان اور ندی دونوں پرکرتی کی دین ہیں. جیسے ہمیں اور آپ کو ہاتھ اور پاؤں پھیلانے کے لیے جگہ چاہیے, ویسے ندیوں کو بھی उस तरह से एक मान कर चला जाता था कि इसका एक रिवर बेसिन होगा कि या बाढ़ का जो इलाका होगा कि बाढ़ का पानी, जब भी क्योंकि बारिश तो रेगुलर फिनोमेना है, बारिश होगी ही, नदी में पानी बढ़ेगा ही, और जब वो पानी बढ़ जाएगा तो वो आसपास के इलाके में फैलेगा, तो वो जो है बाढ़ का इलाका जो है वो डूब क्षेत्र कहा जाता है उसको हिंदी में अगर कहें तो, तो वो डूब क्षेत्र जो है वो हमेशा वो रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डूब क्षेत्र के अंदर कोची जैसे एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, और वो सबसे ज्यादा खबरों में है क्योंकि वो बिल्कुल बंद पड़ा है, उसको खुलना था 28 तारीख को लेकिन 3 दिन और डिले कर दिया गया। तो डूब क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री आ जाए, अगर एयरपोर्ट बन जाए, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल तंग कर दिया जा रहा है, नदी तो अपने प्रवाह के हिसाब से बहेगी। तो डैम मैनेजमेंट यहाँ पर लगभग ये जो पेरियार नदी है इस पर कुल मिलाकर 30 डैम है जो इसकी, ये नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इनको मिलाकर, और यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं है, ये सारे डैम केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो मैनेज करता है। तो अब यह है कि पानी का स्तर जो शहरी इलाके हैं और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें से उतरा जरूर है, लेकिन अभी भी हजारों मकान ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए ही हैं और अभी तक पानी उनमें से गया नहीं है।
सलमान रावी बता रहे थे कि किस तरह से केरल और तमिलनाडु सरकार के बीच अब बाढ़ को लेकर किस तरह से तनातनी हो गई है। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, हमारे साथ गुरप्रीत कौर हैं। गुरप्रीत, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी आदर्श, अभी हमने केरल की बाढ़ की बात की, पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के लोगों की तरफ से केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद की पेशकश की है। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया। इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के लोगों की ओर से हम अपनी प्रार्थनाएं और दुआएं केरल के बाढ़ पीड़ित लोगों को भेज रहे हैं।
जी,
और इसके अलावा फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के हिप इम्प्लांट उपकरण से किए गए 3,600 से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन फेल हुए और 4 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक समिति की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इन बातों को छिपाया और प्रभावित मरीजों का सही आंकड़ा नहीं बताया। ये रिपोर्ट 19 फरवरी 2018 को जारी की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक समिति की सिफारिशें लागू नहीं की हैं। इसके अलावा एक महीने में खरीफ फसल बाजार में आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यापारी किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता, उस पर वो नहीं खरीदता, तो उसे 1 साल की सजा और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
जी।
इसके अलावा व्हाट्सएप से जुड़ी एक खबर दिख रही है अखबारों में। व्हाट्सएप ने फेक न्यूज़ के स्रोत का पता लगाने से इनकार कर दिया। व्हाट्सएप ने किसी मैसेज के स्रोत का पता लगाने की भारत की मांग खारिज कर दी है। कंपनी ने कहा है कि इससे एंड टू एंड एनक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, यूज़र की निजता पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा एक साथ मुमकिन नहीं आम व विधानसभा चुनाव, ये जनसत्ता की हेडलाइन है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने निकट भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को से साफ इनकार कर दिया है। रावत ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। हाल के दिनों में ऐसी अटकलें थी कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है और उन्हें अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव के साथ कराया जा सकता है।
जी, नवभारत टाइम्स में एक खबर है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में 15 साल की गैंगरेप पीड़िता ने बुधवार रात घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि 20 अगस्त को अगवा करके 3 लोगों ने गैंगरेप किया था और पुलिस समझौते का दबाव डाल रही थी। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़कर केस दर्ज कर लिया था, लेकिन बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट आई तो जो SSP थे उन्होंने रेप होने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि इसके बाद वो लड़की दबाव में थी।
इसके अलावा एक और प्रमुख खबर दिख रही है, जाधव मामले में वियना संधि का उल्लंघन साबित करेगा भारत, ये हेडलाइन है। और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि जाधव के मामले में पाकिस्तान ने हर कदम पर वियना संधि का उल्लंघन किया है। फरवरी में जब ICJ में बहस होगी तब पाकिस्तान के सबूत नहीं टिकेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
असम में पिछले 10 सालों से 6 डिटेंशन कैंप हैं और सरकार के मुताबिक करीब 1000 लोग फिलहाल राज्य के इन डिटेंशन कैंपों में कैद हैं। ये कैंप राज्य के सिलचर, ग्वालपाड़ा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहट और डिब्रूगढ़ जिलों में है। कैसी होती है इन डिटेंशन कैंपों में रहने वालों की जिंदगी और ये कौन लोग हैं, इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने।
कल्पना कीजिए कि एक 35 फुट बाई 25 फुट के कमरे में करीब 35 आदमी सो भी रहे हों। सुबह 5 बजे लगभग सभी को एक दहाड़ती हुई आवाज के साथ जगा दिया जाए। 6 बजे तक इन सभी को कमरे में मौजूद एकमात्र टॉयलेट से फारिग होकर चाय और बिस्किट भी लेने होंगे। 6:30 बजे इन सभी लोगों को बाहर एक बड़े से आंगन में छोड़ दिया जाएगा पूरा दिन काटने के लिए। रोज शाम 6:30 बजे वापस उसी कमरे में और रात भर खाने का कोई दूसरा जरिया नहीं। लेकिन इस दुनिया को सिर्फ भीतर रहने वाले ही देख पाते हैं और बयान कर पाते हैं। आमराघाट के रहने वाले अजीत दास 3 महीने सिलचर डिटेंशन कैंप में बिता कर निकले हैं। अजीत दास ने बताया,
जेल जाने का वक्त तकरीबन 1.5 महीना था। कैदियों का साथ उधर रेप केस का भी है, मर्डर केस का भी है, चीटिंग केस का भी है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो उन लोग का साथ मैंने पूरा 1.5 महीना बिताया और रूम का अंदर बाथरूम का सामने सोना पड़ता है आदमी को। 10:30 बजे देता था चावल, बीमार आदमी को जैसा चावल देता है ऐसा चावल है। और दाल तो क्या बोले आपको, पूरा पतला पूरा पानी है दाल में। और सब्जी हाफ बॉयल सब्जी देता था। और मेरा जाने का बाद मेडिकल कराया, 60 किलो वजन था। उसका बाद 2.5 महीना में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया।
सिलचर सेंट्रल जेल के भीतर ही एक डिटेंशन कैंप है जिसमें 50 से ज्यादा ऐसे लोग कैद हैं जिनकी भारतीय नागरिकता पर शक है। खास बात यह है कि ऐसे मामलों की सुनवाई एक विशेष रूप से बनी विदेशी ट्राइब्यूनल में ही शुरू हो सकती है। असम राज्य में साल 2008 से अब तक करीब 90,000 लोगों की नागरिकता शक के घेरे में आ चुकी है। इनमें वो भी शामिल है जिनका नाम डी वोटर यानी संदिग्ध वोटर श्रेणी में है। डिटेंशन कैंप में रहकर आए ज्यादातर लोग बताते हैं कि वहाँ बुजुर्ग काफी हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके विदेशी होने का प्रमाण भी मिल चुका है। लेकिन कछार के रहने वाले और अपनी उम्र 100 से ऊपर बताने वाले चंद्रधर दास जैसे भी हैं जिन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है अगली पेशी तक। हाईवे से सटे एक छोटे से 2 कमरे वाली टीन की छत के नीचे चंद्रधर दास ने अपनी दास्तान सुनाई।
जेल में दूसरे कैदियों को मेरी उम्र और वहाँ होने पर ताज्जुब था। कैदी ही मेरी मदद करते थे क्योंकि मैं बिना सहारे के चल नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इस उम्र में मुझे 3 महीने जेल में डाल दिया गया। अगर जेल जाना पड़ा तो दोबारा जाऊंगा, लेकिन ये साबित करके रहूंगा कि मैं भारतीय ही हूँ।
दशक भर पहले बने इन डिटेंशन कैंपों की व्यवस्था पर सवाल पहले भी उठे हैं। चंद महीने पहले ही पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस कमेटी से इस्तीफा दिया था जिसने असम जाकर इन डिटेंशन कैंपों का जायजा लिया था। हर्ष मंदर का दावा था कि उनकी अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट को इस कमेटी ने गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि असम सरकार ने इस बात को दोहराया है कि डिटेंशन कैंपों की तुलना जेलों से करना गलत है। दक्षिणी असम के विशालकाय कछार प्रांत के जिला उपायुक्त एस लक्ष्मणन ने सभी आरोपों पर बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा,
हार्डन क्रिमिनल्स के साथ इनको रखे हैं। सी द प्रॉब्लम वेयर वी आर फेसिंग इज दैट वी हैव सर्टेन स्पेस कंस्ट्रेंट्स। जेल में सभी लोगों को चेंज करने के लिए टुवर्ड्स बेटर जजमेंट, टुवर्ड्स बेटर बिहेवियर, उसके लिए जेल में लेके जा रहे हैं। डिटेंशन कैंप में जो बेसिक फैसिलिटीज देना है वो फैसिलिटीज दिया जा रहा है। किसी किसी को मेडिकल नीड्स लगता है तो इनको मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही इनका ट्रीटमेंट किया जाता है।
इस बीच डिटेंशन कैंपों में रहकर आए लोगों के दावे दिल दहलाने वाले हैं। 7 साल पहले सिलचर की रहने वाली सुचंद्रा गोस्वामी के घर विदेशी ट्राइब्यूनल का एक नोटिस पहुंचा। ये नोटिस किसी और व्यक्ति के नाम पर था तो उसे सुचंद्रा और उनके परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मई 2015 की एक शाम स्थानीय पुलिस सुचंद्रा को उनके घर से पूछताछ के लिए थाने ले गई और फिर वहां से डिटेंशन कैंप। सुचंद्रा उस दिन को याद करके आज भी भावुक हो उठती है।
हमारे जैसे हाउसवाइफ को ऐसे लेके गया और जेल में डाल दिया, ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा हुआ ना, ये तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था मेरा। और डिटेंशन कैंप नाम के कोई चीज़ ही नहीं है, सब कैदी के साथ मुझे डाल दिया गया। वुमेन सेल था, फिर वो सब कैदी था। जेल के अंदर जो हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होता, जो टॉयलेट वॉयलेट है वो भी ठीक नहीं था। तो कैदी है तो क्या हुआ, उसको तो थोड़ा सा पानी खाना इसको तो ध्यान रखना चाहिए था ना।
असम के डिटेंशन कैंप इन दिनों ज्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिन्हें भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया है। हालांकि करीब 40 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। वैसे जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है उनके खिलाफ फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और सरकार ने उन्हें दोबारा मौका दिया है, लेकिन सभी को डर यही है कि कहीं हर जगह नाकामी मिलने पर डिटेंशन कैंप का रास्ता न खुल जाए। नितिन श्रीवास्तव, BBC असम।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालिमबर्ग में चल रहे 18वें एशियन गेम्स में अब तक भारत के सफर पर अगर हम नजर डालें तो कल कई सारे कबड्डी फैंस के दिल जरूर टूटे, क्योंकि भारतीय पुरुष कबड्डी टीम 28 साल में पहली बार एशियाई खेलों के फाइनल में नहीं पहुंच सकी। कल के खेलों पर एक नजर। बी कृष्णस्वामी, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं,
ये जो 18वें एशियाई खेल है ये पहली बार जो है इस खेलों में ऐसा हुआ कि 5वें दिन भारत को अब तक कोई भी स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ। हालांकि शार्दुल विहान ने भारत को एक रजत पदक दिलाया। उसके अलावा अंकिता रायना जो है महिलाओं की टेनिस में एक कांस्य पदक हासिल करने में सफल रही।
और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि शूटिंग में 15 साल के शार्दुल विहान ने कमाल कर दिया। मेंस डबल ट्रैप शूटिंग फाइनल में अपने अचूक निशाने के बूते शार्दुल ने भारत को पदक दिलाने में कामयाबी हासिल की। और अब एक नज़र आज होने वाले खेलों पर। वी कृष्णस्वामी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट।
छठे दिन की प्रतियोगिता में जो है भारत के लिए उम्मीदें जो होंगी वो काफी सारी टेनिस के खिलाड़ियों से होंगी, क्योंकि टेनिस में जो है भारत के खिलाड़ी जो है अब सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने में सफल रहे तो वहां पर भारत को कुछ पदक मिल सकते हैं। और रोहन बोपन्ना और दिविज शरण यदि पुरुषों के डबल्स में जीत गए तो एक और स्वर्ण पदक की आशा रख सकती है भारतीय।
तो इस तरह से भारत 18 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया है। इस टीम में दो नए खिलाड़ियों को लिया गया है और दो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आखिरी दो मुकाबलों के लिए पृथ्वी शाह और हनुमा विहारी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम मौजूदा समय में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है, जहां 3 टेस्ट मैचों में 1-2 से भारतीय टीम पीछे चल रही है। और विराट कोहली की अगर बात की जाए तो विराट कोहली बल्लेबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। और अगर बात की जाए वनडे की तो उसमें भी विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही झूलन की नवंबर में वेस्टइंडीज में ICC T20 विश्व कप में खेलने की संभावना खत्म हो गई है। वनडे क्रिकेट में अब तक सर्वाधिक विकेट ले चुकी झूलन ने 169 मैचों में 203 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 40 विकेट चटकाए हैं। वो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज हैं। फिलहाल खेलों में इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत कौर से।
BBC समाचार। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि रूसी जांच के मामले में उनका न्याय विभाग किसी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आएगा। यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान सेशंस पर टिप्पणियां की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जाएंगे। इस दौरान वो प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भूमि सुधारों पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कहा कि ट्रंप की टिप्पणियां विभाजनकारी और देश में औपनिवेशिक दौर को याद दिलाने वाली हैं। गूगल ने यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल रहे करीब 50 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। गूगल का कहना है कि ये अकाउंट्स ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB से जुड़े थे और गलत जानकारी फैला रहे थे। इटली के उप प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय संघ के सदस्य देश इटली के क्षेत्र में घुस आई एक नौका पर सवार 150 प्रवासियों को अपने यहाँ शरण नहीं देते तो वो अगले साल से यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग देना बंद कर देंगे। अर्जेंटीना की पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के घर की तलाशी ली। क्रिस्टीना ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को दे इजाजत। नमस्कार।